अगली आयत देखते हैं जो वाकई इस पूरे सबक को सुनने के दौरान जो सवालात आपके जहनों में उठ रहे थे उसका जवाब होगा इंशाल्लाह। और मैं कोशिश भी करूंगी कि इस आयत की रोशनी में फिर हम कुछ अमली चीज़ों पे बात कर सकें कि अल्लाह के रास्ते में जो खर्च किया जाए फिर वो कैसे खर्च किया जाए। देखते हैं आयत नंबर 269 को। युतिल हिकमत मई यशा, वो हिकमत देता है जिसको चाहता है। वमई यूतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, और जो हिकमत दिया गया तो बेशक वो खैरे कसीर दिया गया। वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नहीं नसीहत पकड़ते मगर अक़ल वाले, अक़लमंद लोग ही नसीहत पकड़ते हैं। पीछे से अल्लाह के रास्ते में खर्च की बात थी, बीच में ये आयत हिकमत के बारे में आ गई, जिसकी वजह से इस आयत को हम दो मुख्तलिफ तरीके से देख सकते हैं। एक तो अमूमी हिकमत के टेक्स्ट में कि हिकमत क्या होती है और उसको कैसे हासिल किया जा सकता है, और दूसरा हिकमत का ख़ास तौर पे ताल्लुक अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से कैसे है। तो लफ्ज़ हिकमत जो है ये हुक्म से है, हा काफ मीम इसका रूट है, और हिकमत कहते हैं चीज़ों को मुनासिब तरीके से मुनासिब वक्त पे करना। हिकमत क्या है कि हर चीज़ को उसके सही तरीके और सही वक्त पे करना। अरबी की किताब है बहरे मोहित, उसमें तकरीबन 30 मुख्तलिफ अकवाल जमा किए गए हैं कि हिकमत से क्या मुराद है, और कुरान पाक में ये लफ्ज़ कई जगह आएगा तो इंशाल्लाह हम इसको वहाँ देखते रहेंगे। लेकिन यहाँ इसका ताल्लुक पिछली आयत के साथ है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का सही तरीका ये हिकमत है। अल्लाह ताला कुछ लोगों को इतनी समझ दे देता है, इतनी हिकमत दे देता है कि वो अपनी नेकियों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला उनके लिए अजर व सवाब जमा कर देता है, और वो थोड़ा खर्च करके भी ज़्यादा अजर पा लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा खर्च करके भी गैर मुनासिब जगह पे खर्च करने की वजह से ज़्यादा अजर नहीं पाते। इसको समझें आप पीछे वाली मिसाल से, किसान और बीज डालने की मिसाल हमने पीछे से देखी। वो किसान जो सही ज़मीन का इंतखाब करेगा, सही मौसम पे बीज डालेगा, बीज अच्छी क्वालिटी का ढूंढेगा, फिर उसके बाद उसकी जड़ी बूटियों से हिफाजत करते हुए पानी वक्त पे देगा, उसकी फसल उस किसान की फसल से बहुत ज़्यादा होगी जो ज़मीन का इंतखाब ना करे। अच्छा चलो इधर ही डाल देते हैं, ये घर के करीब जगह, इधर ही बीज डाल देते हैं। डाल दिया, पता क्या चला कि वो तो फर्टाइल जगह ही नहीं थी, निकाल दो। चलो अब क्या मौसम का इंतज़ार करना है, बीज पड़े हुए लाओ अभी डाल देता हूँ, क्या होगा, फसल नहीं उगेगी ना। इसी तरह जब लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करने लगते हैं ना, तो कुछ तो जान छुड़ाते हैं, बस खोला बॉक्स उसमें डाल दिया, चलो जी डाल दिया, ख़त्म कर दो, देना था अपने जेन से बोझ उतारो, ये ज़कात के पैसे पड़े हुए ये देने हैं, सदके की नीयत की थी करना है, बुरा ख्वाब देखा था पैसे देने हैं वो दे दिए, वो रह जाते जहाँ मर्जी डाल देते हैं। एक ये है देना, और एक देना क्या है, कहाँ दूँ, किस ज़मीन पर ज़्यादा उगेगा, कहाँ फसल एक बार उगेगी और कहाँ बार बार उगेगी, कहाँ डाला हुआ सदका जारिया की सूरत में नस्ल दर नस्ल चलेगा, और कहाँ डाला हुआ बस एक वक्त का किसी का खाना पीना और उसकी टॉयलेट पेपर्स में यूज़ हो जाएगा। अक्लमंदी का तकाजा क्या है कि इंसान जब खर्च करने लगे तो इस चीज़ को सामने रखे कि मैं जहाँ खर्च कर रहा हूँ वहाँ खर्च करने का फ़ायदा क्या है, और फ़ायदे की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। एक होता है वक्त, जैसे किसी ख़ास मौके पे खर्च करना बाद में खर्च करने से ज़्यादा अहम हो जाता है, मसलन जैसे तबूक के मौके पर खर्च था, उस मौके पे खर्च करना अहम बहुत था, अगर कोई उस वक़्त ना खर्च कर चुका बाद में वो जितना मर्जी खर्च करे उससे फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह हमारी समझ के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि माल कहाँ दूँ। बस दफ़ा घरों में काम करने वाली औरतों को ये सोच के ज्यादा से ज्यादा दे दिया जाता है कि चलो हमसे दब के रहेंगी, हम इनको 200 रुपये तनख्वाह पे भी रखेंगे तो रह लेंगी, ये सोचकर कि चलो कोई बात नहीं, बाजी ने मुझे बाद में ज़कात भी तो अपनी सारी देनी है ना, और सदका भी तो उन्होंने ही देना है ना। ये दुरुस्त तरीक़ाकार नहीं होता। इंसान को इल्म हासिल करने के बाद जिस चीज़ की दुआ मांगनी चाहिए वो हिकमत है, और इल्म से बड़ी चीज़ है हिकमत। कुछ लोगों को इल्म मिल जाता है, हिकमत नहीं मिलती। अक़ल, फहम, बेहतरीन राय, कुव्वते फैसला, माल कहाँ खर्च किया जाए, क्या किया जाए, ये सब चीज़ों का ताल्लुक हिकमत से है। किसी को आप 10 रुपये देते हैं, वो जाके उन 10 रुपये की कैंडीज लेके आ जाता है, लेकिन किसी को आप 10 रुपये देते हैं तो वो कोई ऐसी चीज़ खरीद के लाता है कि जिससे उसका पेट भी भर जाता है और उसकी सेहत भी ख़राब नहीं होती। दोनों में फ़र्क किस बात का है? हिकमत का फ़र्क है। बच्चे को आप 100 रुपये भी देंगे ना तो वो 100 रुपये के चॉकलेट्स खरीद के आ जाएगा, और बड़े को आप 100 दें तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वो 100 में कोई 2-3 वक्त का खाना खरीद के आए। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला किसी को ज़्यादा माल दे या कम दे ये बड़ी बात नहीं है। हाँ, जिसको हिकमत अल्लाह ताला दे वो काबिले कदर है। हदीस में आता है कि दो लोग काबिले रश्क हैं, एक वो जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया और उसको दिन रात अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है, और दूसरा वो जिसको अल्लाह ताला ने इल्म दिया और हिकमत दी और वो लोगों को इल्म और हिकमत से माला माल कर रहा होता है। तो इसलिए हिकमत के साथ माल को खर्च करना चाहिए। देखिए कि क्या कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ। इसके लिए मसलन आप इस तरह सोच सकते हैं कि लिटरली अगर आप प्रैक्टिकल तौर पे देखें, एक शख्स है आपके पास 1,000 रुपये, आप उसको खर्च करना है। एक तरीका कार है, आप राह जाते मस्जिद का बोर्ड देखा, बाहर चंदा बॉक्स था, आपने उस चंदा बॉक्स में 1,000 डाल दिया। पहली बात है, क्या आपने कभी ये बात सोची? या वहाँ 1,000 का नोट डालने से, 1,000 तो छोड़े 100 का नोट भी डालने से पहले क्या आपने ये सोचा कि इस मस्जिद से क्या फैल रहा है? शिर्क है कि तौहीद है? मैंने एक प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया था, मुझे ऐसे वक्त पे वो याद आ जाता है, बहुत पहले की बात है, पाकिस्तान की ये बात है। लोकल बसें चलती थीं, तो वो बसें जो थी ना वो एक रूट में इस तरीके से गुजरती थी कि वहाँ सड़क के बिल्कुल किनारे पे एक कब्र बनी हुई थी, दरगाह कह लें, कब्र होगी, और उसके ऊपर एक छोटा सा गुंबद बन के मस्जिद थी। और वो बस वाला भी अल्लाह ताला हिदायत दे या उनकी कोई डील होती होगी, उसने क्या किया कि बस जब लाता ना तो वो उस कब्र या दरगाह के करीब बस रोकता था या स्टॉप था, और कहा गया या कुछ लोगों ने खुशी से अपने पॉकेट्स में से पैसे निकाल के ना, तो अब चलती बस में से उन्होंने वो रुपए के अंदर कोई ऐसे कॉइन रख के ना, तो उन्होंने वहां से मस्जिद के अंदर फेंका। मैंने कई लोगों को ये करते देखा, या शायद बस वाले ने कहा था कि नहीं। उस वक्त से ये चीज़ मेरे जहन में, और जब ख़ास तौर पे अब कुरान पाक के साथ इंसान का ताल्लुक बनता है, तो मैं सोचती थी उन्होंने चाहे 1 रुपया डाला होगा, क्या उन्होंने सोचा कि ये कहाँ जा रहा है? क्या हम दीन के लिए तावुन करते हुए ये कभी सोचते कि ये दीन के लिए तावुन हो रहा है या बेदीनी के लिए तावुन हो रहा है? बस लोग जब दीन के नाम पे खर्च करते हैं या लेते देते हैं, तो उसका ज़्यादा खर्च का हिस्सा किस पे जाता है? खाने पीने पे। मैंने इस चीज़ में किसी का अमल देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज़ अल्लाह ताला ने फिर सारी ज़िंदगी दिल में रखी कि कभी भी किसी को दीन के लिए ना तो ये कहा कि आप खर्च करें या दें या लें, बल्कि इसको अपोजिट देखा। मेरे अपने वालिद की बात है जो बताने लगी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह शहर के बड़े ताजिर थे, और आपको पता है कि दीनी हलकों में ऐसे लोगों का आना जाना होता है। कहते हैं एक दफ़ा एक बहुत अच्छा इदारा है दीन का, कोई ख़राब इदारा नहीं है, वहाँ ये गए। अब जैसे आदत होती है लोगों को देख के, तो उन्होंने कहा जी जल्दी से लाएं जी, हाजी साहब आएँ और ये और वो हैं, साथ शायद कोई और लोग थे, तो बोतलें। मेरे वालिद ने ख़ुद बताया कि ये अकेले थे या इनके साथ दो थे, लेकिन जो आदमी अंदर आया वो ट्रे में तकरीबन 8-10 बोतलें खोल के उनमें स्टॉल लगा के लेके आया, लें जी। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, इन्होंने कहा कि मैं तो नहीं पीऊँगा। ये पहली बात बताएं कि मैं एक हूँ या दो लोग हैं, ये 12 बोतलें ये कहाँ से आई हैं, इसके पैसे कहाँ से आएंगे? आपकी जो मेरी मीटिंग भी इस वक्त हो रही है कि हम इस पूरे इदारे को कैसे चलाएं या क्या उसके मदद जामे या उसका खर्चा चलाएं, मुझे ये बताएं कि आप जो पैसे लोगों से लेते हैं उसमें से ज़्यादा खर्चा आप किस पे करते हैं? ये हर आए दिन दावत कहाँ से पकती है? एक देग पक रही है, एक बच्चा कुरान पढ़ता है तो उसकी जगह देग है, ये वो है। जब तक इदारों में ये चीज़ें होती रहें कि आप लोगों से खुलेआम डोनेशंस लें और उसके बाद खुला खर्चा करें, कोई दो लोगों ने खाया बाकी पीछे सारे दूसरे खाएंगे ना। आप देखिए कि आज भी मैं महसूस करती हूँ कि बस जगह हमारे दीनी इदारों में सबसे ज्यादा बड़ा बजट जो है ना, वो खाने पीने का बजट है। इन्होंने कहा कि आप पहले ये बताएं कि ये इदारा सेल्फ फाइनेंस कैसे हो सकता है। सेल्फ फाइनेंस का मतलब ये कि ये खुद ही अपने खर्चे पे चले, डोनेशंस पे कभी भी कोई चीज़ नहीं चलती, ये लिख लें। जो इदारे लोगों की डोनेशन पे चलते हैं ना, वो हमेशा भीख मंगई होते हैं। अल्लाह माफ़ करे, पहले वहाँ पढ़ने वाले तालिबे इल्म ज़कात की रोटियाँ तोड़ते हैं, फिर वहाँ रह के वो खूब गुर सीख चुके होते हैं, उसके बाद जब बड़े होते हैं तो वो दीन के नाम पे मांगने वाले बन चुके होते हैं, फिर एक जामिया बनाते हैं, लोगों से चंदे जमा करते हैं, जी यहाँ जामिया बननी है, भाई ये इतनी थी, ये क्या, नहीं हमारा उस्ताद से झगड़ा हो गया, हम अपनी बनाएंगे। यानी अल्लाह माफ़ करे, इस वक्त हमारे दीन का एक बेशतर हिस्सा चंदों पर चल रहा है। ये सच है कि झूठ? पहले आपको बुलाया जाता है, खूब अच्छा खाना खिलाया जाता है, बाद में बीच में चंदे के बॉक्सेस फैलाए जाते हैं। मैंने लिटरली ऐसा देखा तो बिल्कुल दुख हुआ। एक मस्जिद है, ये बाहर की बातें हैं, हर जगह ये हालात हैं, तो खूब अच्छी दावत थी मस्जिद में, और जैसा एक अच्छा शादी का मील होता है, वो खाना खिला के और उसके बाद माइक पे ऐलान हुआ कि जी दावत हो गई, अब बैठे और ये वो, और उसके बाद में कहा जी कि अभी आपके पास चंदे के बॉक्सेस आएंगे और आप इसमें कुछ पैसे डालें ताकि आज की महफिल का खर्चा पूरा हो। मेरा तो दिल जिस तरह कहते हैं ना, कट के रह गया। मैंने कहा कि कभी हमने अपने घरों में ऐसा किया? आप सोचिए, मेरे या आपके घर में कोई मेहमान आए, आप खूब अच्छी दावत खिलाएं और उसके बाद एक डोनेशन बॉक्स या एक बॉक्स बाय रख दें जाते हुए कि जी जरा इसमें कुछ डाल जाएं कि आपने खाना खाया। क्या मैं ये बर्दाश्त कर सकती हूँ, चाहे मेरी हैसियत किसी को एक सालन खिलाने की हो या चार की हो? मेरा ले कम से कम दर्जे का भी इंसान कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि जिसके इस काम होता है उसका तो दिल और होता है खिलाने को। गरीब से गरीब खुद भूखा रहेगा, मेहमान को खुद खिलाएगा, तो क्या अल्लाह के घर में आए वालों को आप इस तरह डील करते हैं? अगर आपने बाद में डोनेशन लेनी थी, आपको हक नहीं था ये खिलाने का। ऐसी चीजें जम गई हैं आज हमारे नस्ल दर नस्ल के सोच ये लिया है कि जब तक लोगों से चंदा नहीं मांगेंगे तब तक ये काम नहीं चलेगा। मैं इसको सख्ती से रिजेक्ट करती, क्यों? कि मुझे ये पता है कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी मस्जिद जो सबसे खूबसूरत है, जहाँ सबसे ज्यादा एसी चलते हैं, जहाँ के कारपेट सबसे नरम है, आप पूरे हरम के अंदर घूम के देख लें, आपको एक भी डोनेशन बॉक्स नहीं मिलेगा, इल्ला माशाल्लाह कोई खास किसी की कस्टडी में रखे हों तो रखे हों। अल्लाह किसको देता है? वासिउन अलीम। जब आप लोगों के खजानों पे नजर रख के मस्जिदें बनाते हैं या मदरसे बनाते हैं ना, अल्लाह ताला नहीं देता, उल्टी तरकीब हुई। हम कहते हैं पहले बनाते हैं फिर काम शुरू करेंगे, अल्लाह का असूल क्या है? काम शुरू करो, दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ लो, नमाज पढ़नी है ना, बैठो सफ़े बिछाओ, नमाज शुरू कर दो। अल्लाह देखेगा कि तुम्हारी ये जगह भर गई है ना, अल्लाह तुम्हें उससे बड़ी दे देगा। उस दरख्त का साया कम हो गया, अल्लाह तुम्हें वहाँ किसी को तौफीक देगा, वो कपड़ा लगा देगा। लेकिन जब हम बड़ी बड़ी इमारतें बना लेते हैं ना, तो फिर लोग अक्सर नहीं होते। एक ऐसी जगह को मैं जानती हूँ, एक उनके पास मस्जिद थी, अपनी कुछ हिकमतें कुछ तरीक़ेकार होते हैं, लोग वहां आना जाना बिल्कुल छोड़ चुके थे। एक वक्त था वो शहर की बड़ी मस्जिद थी, और जो भी उसको चलाने वाले हैं, जब कोई नया बंदा उनके पास बैठता है तो वो आंखों से रोते हैं, और उनका ख्याल क्या है कि हम इस शहर की सबसे पहली मस्जिद थे, आज जितने लोग हैं ये सब हमारे स्कूल से और हमारी मस्जिद से निकले हुए हैं, और ये हर नई मस्जिद को वो मस्जिद ज़रार कहते हैं कि ये हमारे मुकाबले पर बनी है, और हमारा हक है। आज वो मस्जिद इतनी खाली है कि वहाँ कुछ भी नहीं काम होता। खैर, किस्सा मुख्तसर यह कि वो तो चले जो चलता है, उस मस्जिद के सामने बड़ा सा प्लॉट था, वो बिकने पे था। मस्जिद वालों ने कहा कि हमने ये खरीदा, हमने पिछले 10 साल से इस प्लॉट पे नजर रखी हुई है, ये हमने ही लेना। लोगों ने बहुत समझाया कि क्या करेंगे, ये मस्जिद तो पहले खाली पड़ी है, लोग बुलाएं, आप लोग नहीं आज आपके पास, नहीं ये वो नहीं, कर करा के मैंने अपनी आंखों से देखा। साल 2 साल में फंड रेजिंग्स हुए, खूब लोगों में बातें करके, यानी जिसको कहते हैं ना वास्ते दे के, पिछली बातों के कर करा के, बिल आखिर वो प्लॉट ले लिया, और उसके बाद से जो लोग उस मस्जिद के साथ थे आज वो भी वहां नहीं आते। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं यो तिल हिकमत फकद उत या खैरन कसीरा। असल बात ये है, ये तो लेने वालों की बात कर रही हो ना, देने वालों के भी अंदर अल्लाह ताला ने ये फुरकान डाला होता है कि कहाँ खर्च करने से वो और जमा हो गया और कहाँ खर्च करने से उसके माल के अंदर इजाफा हो गया। वमा अनफक्तुम मिन नफकतिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फइन्नल्लाहा यालमुहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। और जो खर्च तुम करोगे खैरात में से या कबूल करोगे कोई मन्नत, तो बेशक अल्लाह ताला को सब कुछ मालूम है और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं है। अब यहाँ खर्च की दो मज़ीद इकसाम का तज़किरा है। एक है लफ्ज़ नफ़का और दूसरा है नज़र। चूँकि हम पीछे से माली मामलात के बारे में कुरानी अहकामात को मालूम कर रहे हैं, तो जहाँ अल्लाह ताला ने सदक़े की बात बताई, फिर उसके बाद उसी के अंदर कमी बेशी करने का तذکرہ किया, उसके कुछ अदब आदाब बता दिए कि क्या खर्च करो और क्या ना करो, किस दिल से करो और किस नियत से ना करो। अब वहाँ खर्च की एक और बहुत ही अहम किस्म जिसको नफ़का कहते हैं, उसका तذکرہ है कि वमा अनफक्तुम, और जो तुम खर्च करो। कौन तुम? तुमसे मुराद मुसलमान। क्या खर्च करो? मिन नफ़क़तिन, नफ़के में से। नफ़का क्या होता है? इंसान का वो माल जो अपनी ज़ाती ज़रूरियात पे लगाए, रोज़मर्रा की चीज़ें, खाना पीना, लिबास, बिजली पानी। आपने एक मारूफ लफ्ज़ सुना होगा नान नफ़का, तो ये वही लफ्ज़ है। शोहर अपनी बीवी के नान नफ़के का ज़िम्मेदार है, तो यहाँ बात है घरेलू अखराजात। इसके बारे में भी इस्लाम ने हमें इस तरह से नहीं छोड़ा कि हम बग़ैर किसी रहनुमाई के दूसरों से पूछते रहें। अल्लाह ताला ने इसको भी दीन का हिस्सा बनाया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात को जब हम जमा करें तो उसे पता चलता है कि वो दिरहम या वो दीनार जो इंसान अपनी ज़ात पे भी लगाता है, वो भी उसके हक़ में सदका होता है। एक तवील रिवायत में हमने पीछे बात की थी कि जो इंसान अपनी ज़ात पे लगाता है वो भी उसके लिए 10 गुना बढ़ जाता है। फिर इसी तरह एक रिवायत में आपने रग़बत दिलाई शोहरों को इस बात की कि अपनी बीवियों को खुशी के साथ खिलाया करें। आपने फरमाया कि खाने का एक लुकमा जो शोहर अपनी बीवी के मुँह में डालता है, यानी मोहब्बत से या ज़िम्मेदारी समझते हुए, या मतलब यह है कि उसको खाता देखकर खुश होता है, तो ये भी उसके हक़ में सदका लिख दिया जाता है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इतनी बेनियाज है कि वो लोगों को सिर्फ़ अपनी इबादत और अपने रास्ते में खर्च की दावत नहीं देती, बल्कि उसका मामला इंसानों के साथ क्या है कि हर जगह ज़रूरत के मुताबिक खर्च किया जाए। क्योंकि जब हम खाते हैं उसी की ताकत और उसी की एनर्जी से तो हम नेकियों के काम करते हैं। तो जब इंसान खाता है उस खाने के बाद इंसान को जो ताकत मिलती है वो ताकत उसको नेकियों के काम करने की तौफीक जो देती है, तो इस लिहाज से फिर उसका वो खाना पीना भी इबादत बन जाता है। अल्लाह ताला इसके अंदर पहनने उड़ने को भी लाता है। हर वो खर्च जो मासियत पे ना हो, आप ये कह सकते हैं नाफरमानी ना हो, गुनाह का काम ना हो, और ना ही फ़ी सबीलिल्लाह हो। फ़ी सबीलिल्लाह में तो बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं ना। हर चीज़ फ़ी सबीलिल्लाह नहीं होती। आप सोच के देखें, सारा दिन जो कुछ आप खर्च करते हैं हर जगह आपकी नीयत क्या होती है? क्या अल्लाह के रास्ते में? नहीं। आप अपने बच्चों के लिए ख़रीदते हैं, आप बाज़ दफ़ा एक घर में रहते हुए दूसरे साथियों के लिए ख़रीदते हैं। ठीक है, मेहमान के लिए जो होता है वो तो हकीकत में एक इबादत ही बन जाती है, लेकिन बास लोग सिर्फ इसको अपनी मेहमान नवाजी समझ के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, खर्च करते हैं। तो जहाँ ना कोई चीज़ फ़ी सबीलिल्लाह में हो और ना गुनाह में हो, तो वो चीज़ इंसान के लिए नफ़का बन जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाते वमा अनफक्तुम मिन नफ़क़तिन। अगर इसके बाद बीच के हिस्से को ज़रा हल्का सा, मतलब उसको पीछे करके आयत को आगे मिलाएं, तो क्या मतलब है? वमा अनफक्तुम मिन नफ़क़तिन फ़इन्नल्लाहा यालमुहु, और जो कुछ भी तुम खर्च करते हो अल्लाह इसको खूब जानता है। मतलब क्या है कि कौन ज़्यादा खर्च करता है, कौन कम खर्च करता है, कौन अपनी ज़रूरियात को बढ़ा लेता है, तईशात को ज़रूरियात बना लेता है, कौन इसराफ़ करता है, कौन बुखल करता है, कौन कंजूसी करता है, ये सब कुछ अल्लाह को पता है। हमारे लिए इतने हिस्से में अमल की बात ये है कि अगर हमारे ऊपर घर की जिम्मेदारियां हैं, यानी हम साहिबे खाना हैं, तो फिर हमें खुश दिली से खर्च करना चाहिए, बीवी बच्चों को बोझ नहीं समझना चाहिए। अगर घर में हमारे साथ माँ रहती है या कोई और ऐसा इंसान है जिसकी हम किफालत कर रहे हैं, तो खुश हों और उसको अपनी हैसियत के मुताबिक खिलाएं पिलाएं। और फिर इसके बहुत सारे आदाब हैं जो इस वक्त मौका नहीं, किसी और मौके पे इस पे हम बात कर सकते हैं कि इंसान जो अपनी ज़ात पे खर्च करता है उसकी क्या लिमिट्स हैं और कितना होना चाहिए। लेकिन कुछ भी खर्च करते हुए ये ज़रूर नियत कर लिया करें कि मेरे इस खर्च को अल्लाह ताला कबूल करे और मैं इसको भी इबादत समझ के करता हूँ। घर वालों पे तो सभी ही लगाते हैं, लेकिन नियत का फ़र्क उस खर्च को इंशाअल्लाह ताला नेकी बना देगा। अब दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं, औ नज़र तुम, या तुम नज़र मानो। नज़र का लफ्ज़ मारूफ है हमारे यहाँ, एक नज़र होती है ज़ोए से, जैसे नज़र नज़ारा, ये ज़ाल से है, आप देख रहे होंगे नज़र। तो नज़र कहते हैं इंसान अपनी किसी मन्नत या मुराद के पूरा होने पर कुछ खर्च करे और अपने ऊपर इसको लाजिम कर ले। नज़र जो होती है ना, वो लाजिम नहीं होती, लेकिन इंसान अपने ऊपर खुद लाजिम कर लेता है। मसलन, मेरा फलां काम हो गया, फलां मुसीबत से निजात मिल गई, तो मैं अल्लाह के रास्ते में इतना सदका करूँगा। ये चीज़ नज़र कहलाती है। ये दो किस्म की होती है, एक नज़र क्या होती है शर्त के साथ और एक होती है बग़ैर शर्त के। शर्त के साथ क्या होती है कि अगर मेरा फलां काम हुआ तो फिर मैं ये काम करूँगा। इस सूरत में लोग इंतज़ार करते हैं उस काम के होने का, जब हो जाता है तो करते हैं उस काम को पूरा, वरना नहीं करते। दूसरी सूरत यह है कि मैं तो ये काम करने लगा हूँ, यानी बस मैं ये काम करता हूँ और अल्लाह ताला मेरे इस काम से खुश होकर मेरा ये काम कर दे, तो इस सूरत में फिर फौरन ही उस नज़र को पूरा कर दिया जाता है। इस्लाम का नज़र के बारे में क्या मामला है? हमारे यहाँ अमूमन एक लफ्ज़ आता है नज़र व न्यास, बस अभी इस वक्त नज़र को समझ लें, न्यास फिर कहीं आगे जाके समझेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इस्लाम नज़र के मामले में क्या कहता है? इसी को उर्दू में आम लफ्ज़ों में मन्नत भी कहते हैं, मन्नत मानना। तो देखिए, मन्नत के लिए अल्लाह ताला का वही असूल है जो बाकी दूसरे कामों के लिए। पहली बात यह है कि मन्नत माननी जायज़ है, नंबर वन। फिर दूसरी बात यह है कि मन्नत मानने में किसी नाजायज़ काम की नियत नहीं की जा सकती। मसलन, आप ये मन्नत मानते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद हो जाए तो मैं 2 रोज़े रखूँगी, ठीक है? या एक और मन्नत होती है, वो लिखना चाहे तो लिख ले, आगे जाके इंशाल्लाह सूरह आल इमरान में आएगी, तबर्रो होती है, यानी पेट के बच्चे को ही अल्लाह की तरफ खास कर देना। यानी बस लोगों के पास औलाद नहीं होती तो वो कहते हैं अच्छा अल्लाह ने अगर मुझे बेटा दिया ना तो मैं उसको हाफिज़ कुरान बनाऊंगी, अच्छा बेटी हुई ना तो उसको अल्लाह के दीन पे लगाऊंगी, ठीक है? तो मन्नत की शर्त क्या है कि जिस काम की नियत की जा रही है ना, वो काम भी जायज़ हो। रोज़े रखने की है, ठीक है, और नमाज की है, सदका खैरात की है, डिवोशन की है, ठीक है, जायज़ है। पॉइंट्स में लिखेंगे तो इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल निथर के आपके सामने आ जाएगा, जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा उलझा दिया हुआ है कुछ वजूहात की बिना पर, ठीक है? अगली चीज़ देखें कि हराम और नाजायज़ काम की मन्नत नहीं मान सकते। वो वैसे ही हराम है, वो वैसे ही नाजायज़ है, मन्नत माने या ना माने, मानेंगे मन्नत उसकी तो वो जायज़ नहीं। मसलन, कोई शिर्क की मन्नत मान लेनी कि अल्लाह बच्चा देगा तो उसको फलां बाबा जी की कब्र पे जाके सलाम करवाऊंगी या सजदा करवाऊंगी या उसको फलां दरगाह पे छोड़ आऊंगी, एक बकरा मैं फलां कब्र पे जाके छोड़ आऊंगी, इस तरह की मन्नत मानना। कोई ये मन्नत माने कि अच्छा मेरा ये काम हो जाए तो मैं फलां शराब खाने में 1,000 रुपया दूंगी, मिसाल दे रही हूँ, कोई भी ऐसी बेकार बात जो वैसे ही गुनाह ऐसे भी गुनाह। कोई कि अल्लाह मुझे बेटी दे तो उसको मैं गुलूकारा बनाऊंगी, ये सारी मन्नतें नाजायज़ और हराम है, इसको नहीं करना। अगली चीज़ मन्नत के बारे में क्या है कि अगर आपने किसी काम की मन्नत मानी है और वो जायज़ है तो फिर उसको पूरा करना होगा। बिल्कुल कसम की मिसल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का खुलासा है कि जो कसम का कफारा है ना वही नजर का, यानी नजर मानना और कसम खाना एक ही बराबर है। क्या करेंगे, कसम जैसे पूरी करनी लाजिम है, इस तरह नज़र को पूरा करें। एक सहाबी नबी सल्लम के पास आए, कहने लगे कि इस्लाम से पहले दौरे जाहिलियत में मैंने कसम खाई थी कि मेरा फलां काम हो गया तो मैं बवाना वादी में जाकर एक ऊंट ज़बह करूंगा। तो नबी सल्लम ने पूछा क्यों, वहाँ की मन्नत क्यों मानी, यानी इनका सवाल क्या था कि क्या मैं ये मन्नत पूरी करूँ, क्योंकि ये कुफर से अब इस्लाम पे आ चुके थे। तो आपने कहा कि तुमने वहां जाके जिबा करने की कसम क्यों खाई थी, मन्नत क्यों मानी। कहा ऐसे। आपने पूछा क्या वहां कोई कब्र है जिसका लोग तवाफ करते हैं। कहा नहीं। कहा क्या वहां कोई दरख्त है जिसको लोग मोतबिर समझते हैं। नहीं। चेक किया कि कहीं कोई शिर्क का शायबा तो नहीं। जब उन्होंने कहा कि नहीं है तो आपने कहा कि जाओ और अपनी कसम को पूरा करो। क्या पता चला कि जायज काम की मन्नत थी तो उसको पूरा करना होगा। फिर अगली बात है कि अगर बिलफर्ज हमने नासमझी में किसी नाजायज काम की मन्नत मानी हुई थी, आज हमें ये बात पता चल गई ऐसा नहीं करना, तो क्या आप उस मन्नत को पूरा करें कि ना करें। तो उसके लिए पूरा करने की बिल्कुल और कतन ज़रूरत नहीं है, बस उस पे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और आइंदा कभी भी ऐसी किसी बात को ना कर सकें। एक अगला पॉइंट इसके लिए नोट कीजिएगा कि अगर किसी काम की मन्नत माने और कर ना सकें तो क्या करेंगे, उसका कफारा दे देंगे। और वो कफारा क्या है, इंशाअल्लाह ताला सूरह मायदा में हम पढ़ेंगे, 7वें पारे के पहले रुकू में ही आएगा कि 10 मिसकीनों को खाना खिलाना है या कपड़ा पहनाना है। पहली शर्त क्या है कि 3 दिन के रोजे रखे जाएंगे, वो ना रख सकें तो फिर कफारा है, और इंशाअल्लाह इसकी डिटेल्स हम वहां पे देखेंगे। फिर अगली चीज मन्नत के बारे में नोट कीजिएगा कि कोई ऐसे काम की मन्नत नहीं माननी चाहिए जो पूरा नहीं कर सकते आप। मसलन कोई मन्नत माने कि मेरा बेटा पैदा हुआ ना तो मैं पहाड़ खोदूंगा और उसके अंदर से पानी निकालूंगा, मैं चांद पे जाऊंगा, ये बेकार और अबस बातें होंगी। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि औ नजर तुम मिन नजरिन, नजर में से कोई नजर मानो। एक और छोटी चीज नोट कर लें इसी में, और वो क्या है कि अगर किसी ने कोई मन्नत मानी थी और फौत हो गया और पूरी नहीं कर सका तो क्या किया जाए। तो उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लम के पास एक सहाबी आए, कहने लगे कि मेरी माँ किसी बहरी सफ़र पे थी, जहाज़ मौजों में घिर गया, तूफान आ गया, मेरी माँ ने ये नियत की कि अगर अल्लाह ताला मुझे इधर से खैर आफियत से निकाल दे तो मैं रोज़ा रखूँगी या रोज़े रखूँगी, या कोई और भी नेकी थी, 2-3 मुख्तलिफ वाक़ियात आते हैं। अब मेरी माँ को अल्लाह ताला ने वहाँ से निजात दी, वो उस समंदरी सफ़र से बख़ैर आफियत वापस आ गई, फिर उसके बाद वो अपनी मन्नत पूरी किए बग़ैर फौत हो गई। तो क्या मैं उसकी मन्नत पूरी करूँ। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया ये बताओ कि अगर तुम्हारी माँ के ज़िम्मे किसी का कर्ज़ होता तो क्या तुम उसका कर्ज़ अदा करते। कहा बिल्कुल करता। तो आपने फरमाया कि फदैनुल्लाहि अहक्कु अन युक्दा, तो फिर अल्लाह का कर्ज ज्यादा हकदार है कि उसको अदा किया जाए, और कहा कि उनकी मन्नत को पूरा करो। तो इससे हुक्म क्या मिला, अगर किसी ने कोई मन्नत मानी थी, जायज काम की थी, तो फिर वो फौत हो गया उसको पूरा करने से पहले, तो उसको बाद में उसके वली या उसके वारिस जो हैं वो पूरा करेंगे। और कतन अपने आप को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। नज़र के लिए एक और चीज़ भी जहन से झटक गई थी, वो भी इसी में ऐड करेंगे आप, और वो क्या है कि मन्नत मानने से तकदीर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पसंदीदा अमल नहीं है चाहे जायज़ काम की है। देखिए शर्त लगाते हैं ना, अगर आप ये कर दे अल्लाह तो मैं करूँगी, तो क्या अल्लाह ताला की ज़ात और उसकी शान जो है कि हम शर्तें लगाएं, हमें तो इतनी आजी दिखानी चाहिए कि वो काम कर दे। ठीक है, आपने फरमाया कि मन्नत मानने से तकदीर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बखील से कुछ माल निकल जाता है, यानी उस बुखल वाले ने वैसे तो देना नहीं था, मुश्किल में फंसा तो चलो इसी बहाने कुछ माल दे दिया, वरना तकदीर में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा मन्नतें नहीं माननी चाहिए, और माने तो फिर उसको पूरा करें, और ना पूरा करेंगे तो ये इंसान के ज़िम्मे होगा। अल्लाह ताला कहते हैं मैं उसको जानता हूँ, वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ज़ालिमों का कोई भी मददगार नहीं है। यहाँ जालिम किनको कहा गया, जो मन्नत मान लें और उसको पूरा ना करें, और या फिर मन्नत मान लें तो नाजायज़ काम की माने, यानी वो सारी चीज़ें जो इसके नाते से मिलती थी नज़र के, वो सारी ऑपोजिट है। फिर बाज़ लोग माली इबादत की नज़र मानते हैं यानी माल देंगे, बाज़ जिस्मानी या बदनी इबादत करने की मन्नत मानते हैं यानी नफिल पढ़ेंगे और रोज़े रखेंगे। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, अल्लाह को सब कुछ पता है।